पर मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि बड़े पापा की नाराजगी खत्म हो गई और उन्होंने अंकल के घर जाकर दीदी की शादी की तारीख निकलवाई है। अब दीदी की शादी होगी और ये परिवार फिर से एक हो जाएगा। अच्छी बात है, मुझे जानकर खुशी हुई कि फाइनली अब दीदी की शादी होगी। फिर भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, उत्सुकता में तुम्हें चोट लग जाती तो? ईशान की आंखों और आवाज में कशिश के लिए चिंता, फिक्र और परवाह साफ झलक रही थी। कशिश को भी अब अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मुंह लटकाते हुए कहा, सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा चलो, अब मुंह धोकर आओ, रोने से काजल फैल गया है तुम्हारा। कशिश ने हामी भरी और बाथरूम में चली गई। जब वापस बाहर आई तो ईशान पलंग के पास खड़ा धीरज जी की तस्वीर को देख रहा था। चेहरे पर गहरी उदासी, दर्द, मायूसी और तड़प जैसे कई भाव पांव पसारे बैठे थे और अधरों पर अनंत काल तक चलने वाली खामोशी छाई हुई थी। कशिश ईशान के पास आकर खड़ी हो गई और धीरज जी की तस्वीर को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, पापा दीदी की शादी करवाना चाहते थे और अब दीदी की शादी होने वाली है, पापा बहुत खुश होंगे ना? उन्हें दीदी की बहुत चिंता थी, इसीलिए दुनिया से जाने से पहले वो उनका भविष्य सुनिश्चित करना चाहते थे, पर दीदी की शादी से पहले ही वो हमें छोड़कर चले गए। पर वो सुकून से रहेंगे, दीदी बता रही थी कि इस बिखरे परिवार को एकजुट करना ही पापा की आखिरी इच्छा थी और आज उनकी ये इच्छा पूरी हो गई, अब उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हाँ, उन्होंने आखिरी सांस तक बड़े पापा की नाराज़गी दूर करने की कोशिश की, पर अफसोस कि उनकी नाराज़गी दूर न कर सके। उनकी आत्मा ने उनके देह को त्याग दिया, पर बड़े पापा की नाराज़गी खत्म नहीं हुई। अब आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो भी गया तब भी इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिन्हें उनकी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता था वो तो दुनिया से जा चुके हैं और अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। ईशान ने कशिश की बात पर सहमति जाहिर करते हुए आज की हकीकत से उसे रूबरू करवाया। उसके शब्दों में दर्द खुला था, ऐसा दर्द जिसका कोई अंत नहीं, पर दर्द छुपाने में माहिर था वो। उसने ठंडी आह भरी और खामोश हो गया। कशिश ने उसकी बात सुनी तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। बड़े पापा मान गए, सब ठीक हो गया, क्या तुम इससे खुश नहीं? कशिश ने हैरानी से सवाल किया। ईशान ने अब निगाहें कशिश की तरफ घुमाई और गंभीर स्वर में भावहीन सा बोला, अगर अब तुम्हारे पापा तुम्हें वापस अपना लें तो क्या तुम बीती बातें भुलाकर माफ कर सकोगी, उन्हें खुश हो सकोगी, उन्हें दोबारा दिल से अपना सकोगी? आदतन ईशान ने सवाल के बदले इस बार भी कशिश से एक सवाल कर दिया। ईशान का ये एक सवाल और कशिश एकदम खामोश हो गई। उसके मौन और चेहरे के भावों ने ईशान को उसके सवाल का जवाब दे दिया था, परिणाम स्वरूप उसके लबों पर दर्द भरी मुस्कान ठहर गई। नहीं कर सकोगी ना, क्योंकि जैसा व्यवहार उन्होंने तुम्हारे साथ किया उसने तुम्हारे शरीर से ज्यादा चोट तुम्हारे दिल और रूह पर किया है। उनके कड़वे जहरीले शब्दों से तुम्हारी आत्मा घायल हुई है और उनके दिए जख्म नासूर बन चुके हैं, जो अब कभी कितनी ही माफियों और प्यार के बाद भी भर नहीं सकते। वजह चाहे जो हो, पर उन्होंने तुम्हें वो जख्म दिया है जिसका भरना नामुमकिन है, जिसकी टीस वक्त के साथ कम होने की जगह हर पल बढ़ती ही जा रही है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। आज भले ही बड़े पापा को पापा के दर्द का, अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर उससे उन्होंने पास्ट में जो किया, अपने शब्दों और व्यवहार से पापा को जितनी तकलीफ पहुंचाई और अपने पिता को दर्द में देखकर जो दर्द मैंने महसूस किया, वो ना खत्म हो सकता है और ना ही कम। मैंने अपने पिता को पल पल घुटते देखा है कशी, और मैं चाहूं भी तो वो सब कभी नहीं भूल सकूंगा। दीदी ने सब भूल कर बड़े पापा को माफ कर दिया ना, क्योंकि बहुत बड़ा दिल है उनका। अगर पापा जिंदा होते तो वो भी माफ कर देते, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, इतना महान नहीं हूं मैं। जिनके वजह से मेरे पापा ने सालों दर्द, घुटन, जिल्लत भरी जिंदगी जी और अंत में वक्त से पहले हमें छोड़कर चले गए, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। जिन्होंने मेरे पापा को त्याग दिया, परिवार के होते हुए उन्हें तन्हा घुट घुट कर उस अपराध बोध के साथ एक जिल्लत, धिक्कार, तिरस्कार भरी जिंदगी जीने पर मजबूर किया, मैं उन्हें नहीं अपना सकता, इतना बेगैरत नहीं हूं मैं। मैं नहीं कर सकता दिखावा सब ठीक होने का, क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं है और न ही कभी हो सकता है। ये परिवार आज भले एक हो गया हो, पर मेरे लिए कल भी मेरा परिवार पापा, दीदी और तुम ही थे, और आगे भी तुम ही मेरा परिवार रहोगे। मैं उन लोगों को कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकता, इसलिए प्लीज इस बारे में दोबारा मुझसे बात मत करना और ना ही मुझसे कोई उम्मीद रखना। सब खुश है ना आज? सब ठीक हो गया तो रहने दो उन्हें खुश, पर मुझे इसमें शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मुझे खुशी नहीं मिली बल्कि मेरी तकलीफ़ों में और इजाफा हो गया है। ईशान की दर्द भरी बातें कशिश के कानों में गर्म लावों सी पिघलती रहीं। कितनी तकलीफ में था वो, और वो इतनी बेबस, लाचार कि चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। ईशान अपनी बात कहकर, अपना फैसला उसे सुनाकर, इनफैक्ट उससे बाकायदा रिक्वेस्ट करने के बाद बालकनी में चला गया। आज फिर उसकी सुनी निगाहें घाट और गंगा मैया पर टिकी थीं। चेहरा एक बार फिर भावहीन हो गया था, पर मन में भावनाओं का तूफान सा उठ रहा था। कशिश अंदर अकेली खड़ी कुछ देर तक उसकी कही बातों के बारे में सोचती रही, फिर उसके पीछे पीछे बालकनी में चली आई और ईशान के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ पल उनके बीच गहरा सन्नाटा पसरा रहा, फिर कशिश ने ईशान के भावहीन चेहरे को देखते हुए गंभीरता से कहा, मैं समझती हूँ आपकी फीलिंग्स को, मैं आपसे किसी को माफ़ करने नहीं कहूँगी। जब आपका दिल बीती बातें भूलकर उन्हें माफ़ करने को तैयार हो तभी माफ़ कीजिएगा उन्हें, पर अभी नीचे चलिए और किसी के लिए नहीं तो रजनी दीदी के लिए नीचे चलिए। आज बहुत खुश हैं वो और आपकी गैर मौजूदगी उनकी खुशियों पर ग्रहण लगा देगी। और कुछ नहीं तो दीदी ने शादी के लिए हाँ कह दिया और उनकी शादी की डेट फिक्स हो गई, इसके लिए खुश हो जाइए। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके पास मौजूद ही रहिए, वरना बुरा लगेगा उन्हें। ईशान खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा, न तो उसकी खामोशी टूटी और न ही निगाहें कशिश की ओर मुड़ी। चेहरा अब भी भावहीन था और सुने वीरान निगाहें घाट को एक टक निहार रही थीं। जाने इस खामोशी के पीछे कितना विनाशक तूफान छिपा था, जाने क्या करने वाला था ईशान।